पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए यानी सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारी कथाएं आपको सुनानी पड़ रही हैं। अन्यथा जब आप परिचित हो जाओगे, कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर जी है और ये इनके पाने की विधि है और किन किन को ये भगवान मिले, ये कथाएं आपको याद अवश्य रहनी चाहिए क्योंकि आपको भ्रमित नहीं करेंगी। फिर तो नाम जाप करना है, गुरु की मर्यादा में रहना है और अपना पुण्य धर्म जो भी आदेश हो गुरुदेव का उसको करते रहना है बेड़ा पार। फिर तो साधना तो इतनी आसान है, सबसे आसान भक्ति करना है। जैसे आप कोई काम करते हो, जैसे बहन बेटियां रोटी बनावे, कितना सांग जोड़ना पड़े है, कितना ताम जाम लेना पड़े, गिनती ना हो इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं कि तब परात चूल्हा तवा लकड़ी या गैस सिलेंडर है, वो गैस वाला चूल्हा, फिर आटा है, फिर नमक मिर्च जीरा और वही सब्जी काटनी, फिर वो पकानी है, फिर आटा गूंदना, तो कितने आइटम कितना कुछ संघर्ष कर इसी गर्मी में उस भटका आगे चूल्हे का आगे खड़ा रह कर बनाना, पसीना पसीना हो जा और जब रोटी तैयार हो। और परमात्मा की भक्ति में कुछ भी इतना लेना, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। बस में बैठे जा रहे हो, सफर कर रहे हो ट्रेन में या अपने व्हीकल में या पैदल चल रहे हो, तो अपने मालिक ने याद करता जावे, सांस का सिमरन किसी ने बिना बेरा के कराए हो, चाहे बस में बैठे हो चलते हो, श्वास उस श्वास से सिमरन है वो दो मंत्र का, सतनाम का। और प्रथम मंत्र है वो मन मन में मानसिक भी कर सकते हो, अपनी उंगलियां पर कर ले, एक पूरा मंत्र हो जाए फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर वैसे करके अपना सारा दिन इस काम लाए रखे इस मन पापी ने। कितना आसान, कुछ भी ना लेना, लेट के कर ले, स्मरण शुरू हो गया बैठ के कर ले, चल चलते फिरते कर ले, खाना तैयार हो इतने पांच चार स्मरण का लोटा मार ले दस, तो इस तरह अपना काम बना रहे हैं, राटा गूंदा स्मरण कर जा मंत्र कर ले, यानी इतना बढ़िया तरीका, इतना आसान, कुछ भी इकट्ठा ना करना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। परमात्मा ने कहा नहाए धोए क्या भया जाए मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रह धोए बांस ना जाए। नहाना धोना तो शरीर की स्वच्छता है, ये नहाना स्नान करना तो अच्छी बात है, किसी टाइम कर लो, सुबह कर ले तो बहुत अच्छा है, यानी अपने काम पर जाने से पहले कर ले। अब खेत में मजदूर जाता है अपने मजदूरी पर, वो सुबह नहा के क्या करेगा भाई, चंदे फिर मिट्टी में गद्दम गद्दा होना, सांझ ने नहा ले अपना, सुबह अपनी भक्ति कर ले, हाथ धोकर कर ले, यानी पुस्तक जूठे हाथ नहीं लगावे, खराब बात ना लिखाओ, कागज खराब हो जाए वो आपका फिर व्यर्थ हो जाएगा, अनादर बनेगा। हाथ धो ले, हाथ पैर धो के अपना बैठ के किता मंत्र कर लेना, फिर तो चलते फिरते कुरला भी करने की जरूरत नहीं, सुमण सांस के सुमण में या मंत्र जाप करते हो पहला आंख खुला जब रात न मंड जा कर डा हो गए। यानी ये तो हम ऐसे बंधन बना दिए हमारे, हम भक्ति करना चाहो तो करण पावा नहीं, पहले नहाओ है नए कपड़े पहरो कति सारे साफ और जब बैठोगी तो भक्ति वह। तो वैसे तो स्वच्छता रखनी अच्छी बात है, लेकिन दिल की स्वच्छता ज्यादा अच्छी बताई। तो हमने अपना दिल साफ करके भक्ति करनी है और स्नान भी करना है, वस्त्र भी साफ रखने, ये भी अच्छी बात है क्योंकि ना बीमारी हो जाएगी। लेकिन भक्ति के लिए विशेष आडंबर की कति आवश्यकता नहीं, अपनी भक्ति करो परमात्मा पाओ। बोलो सतगुरु जी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक बंदी छोड़ कबीर भगवान जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में कष्ट उठा रही हैं, यथार्थ ज्ञान यथार्थ भगवान आपका मूल स्थान याद दिलाने के लिए यहां रह रह कर आते रहते हैं। इस काल भगवान ने यानी ब्रह्म ने जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम सभी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, वो परमात्मा आकर याद दिलाता है भाई झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, भाई सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, ये सकल आहार है काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जितने भी ये मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये काल का आहार है, वो काल भगवान सबको खाता है। उसी के लिए अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त, विष्णु जी को सतगुण युक्त और शंकर जी को तमोगुण युक्त। इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये प्राणी यहां पर विवश होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, फिर एक दूसरे में ममता ऑटोमेटिकली बन जाती है, जीव के बस की नहीं, और फिर अपने तीसरे पुत्र के तमोगुण के प्रभाव से ये सभी को बेचैन रखता है। छोटी सी बात पर कितना प्रिय मित्र हो, लोभ लालच में या किसी और बात से तुरंत झगड़ा कर बैठते हैं, आपस में घर में भी कई बार बिना बात के वैसे ही छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, बेचैनी बनी रहती है, फिर मुंह चढ़ा लेते हैं, कई दिन बात नहीं करते। तो इस तरह की हमें परेशानियां और यहां फंसाए रखने का जो उद्देश्य है ये काल भगवान का ही है, उसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है। ये मानव शरीर के अंदर प्राणी इतने व्यसन करता है, ना चाहते हुए भी जिसकी आवश्यकता नहीं वो भी खोज कर लेता है। बताओ पहले थे तमाखू ओका बीड़ी सिगरेट, ये मनुष्य का आहार नहीं है, इसने तमाखू को गधे भी नहीं खाते जब भी तमाखू उत्पन्न होता है जहां पर, और मनुष्य ने वह भी खोज कर ली, डिस्कवरी कर ली, तमाकू सिगरेट बना ली, बीड़ी बना ली, रोका देख किस तरह का साग जोड़िया है, पानी घालन का न्यारा, वो दो दो तीन नली न्यारी, फिर चलम बनाई, पता क्या आवश्यकता चीज की। तो कहने का तात्पर्य है कि काल भगवान ये मन रूप में सब में विद्यमान है, अपना एक एजेंट छोड़ रखा है, और ये सारी बकवास चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि काल भगवान ने हमें खाना है, प्रत्येक प्राणी को खाना है, और उसके लिए वो अपना उसके अंदर एक मेटेरियल विशेष तैयार कराता जो चटपटा उसको स्वादिष्ट लगे। इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में वो डिपॉजिट हो जाता है। जो भी टेस्ट स्वाद हम खाने का पीने का जो भी करते हैं, शराब पीते हैं, चटपटे भोजन खाते हैं, ये सारा उसमें डिपॉजिट होता है। स्थूल शरीर तो उस खाने से स्थूल शरीर के लिए तो परमात्मा ने कहा है कि लुखी सुखी खाकर ठंडा पानी पी और देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। तो शरीर तो इससे एक सूखी आली सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पीने से भी स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मन की स्वाद है, आज नमक ठीक कोई ना जो है ना छोंक ठीक नहीं लग गया, नमक थोड़ा था या घना था, अगर चलो ये भी सीमित हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी और जो है बीड़ी हुक्का तम्बाखू ये बकवाद भी मतलब ये, तो ये मन करवाता है। और फिर ये स्थूल शरीर यहां रह जाता है, सूक्ष्म शरीर को वहां तपत शिला एक तवा बना हुआ बहुत बड़ा ऑटोमेटिक काल के 21वें ब्रह्मंड में सबसे ऊपर के स्थान पर है, और वहां वो एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वहां डाल देता है, उसमें से वो तड़फ तड़फ कर जैसे खील बुनिया करें ऐसे चटक मटक होते हैं वहां पर, मरते नहीं प्राणी लेकिन कष्ट तोबा बोल जाते हैं, और वहां ये अपना स्वाद करता है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह बोल रहा है और कहता है कि अर्जुन मैं सबको खाने के लिए मैं काल हूं और सबको लोगों को खाने के लिए नष्ट करने के लिए आया हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता है भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषियों को भी, और ये शब्द भी आपके सब शब्दों के समुदाय के टोल आपसे कम्बल मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी नहीं बख्श रहे हो। तो ये कहता मैं तो भाई काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं, और वो परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोदे, ये सकल च बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब कुछ को तो खा लिया 100,000 डेली खा रहा है, बाकी शेष बच रहे हैं उनको यहां गोदी में खिला रहा है, गोदी में खिलाना माने पाल रहा है जैसे कसाई बकरे पालता है। अब उन बेचारों बकरों यानी बकरियों की प्राणियों की बुद्धि इतनी ही है, वो आगे नहीं सोच सकते, और ऐसी ही हमारी बुद्धि सेट कर रखी है काल ने, हम इससे आगे सोच ही नहीं सकते। किसी का बेटा मर गया ठीक है दुख होता है, पड़ोसी पड़ोसी भी दुखी होते हैं, रिश्तेदार भी संबंधी आकर के दुख में दुखी होते हैं, रोते हैं पीटते हैं, और उस दिन के अंदर फिर शांत हो जाती है, और क्या करें, और कोई विकल्प नहीं इसका। हाँ विकल्प है, प्रभु बता रहे हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, वहां चल कहां सुख सागर। सुख सागर कौन सा है, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञानदाता काल कह रहा कि अर्जुन यदि तूने परम शांति चाहिए कि ना तू झगड़ ना तने युद्ध करना ना कोई और किसी प्रकार की परेशानी ना जन्म और मृत्यु हो, तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम, सनातन परम धाम का अर्थ है जो सदा रहने वाला स्थान, हम उसको सतलोक कहते हैं, तो तू सतलोक चला जाएगा। सतलोक माने सच्चा लोक, अविनाशी स्थान। तो परमात्मा भी अपने सूक्ष्म वेद में अमर वाणी में बोल रहे हैं, सचिदानंद घन की वाणी में, कि मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, रतन आगार, आगार माने खान, डिपो, जहां सुख रूपी रत्नों की खान है, यानी कभी सुख खत्म नहीं होते, उस लोक को चल, शाश्वत स्थान सतलोक में चल, सुख के सागर चल। अब सुख सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज ना हो। जैसे समुद्र को सागर कहते हैं, तो समुद्र में जब आप पहुंच जाओगे 100-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आता, केवल जल जल दिखाई देता है। इसलिए सुख का सागर सतलोक बताया है कि वहां दुख नाम की वस्तु नहीं है, सुख है सुख, सुख है सुख है। और ये काल का लोक है, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है, दुख है दुख। तो इस दुख सागर से निकलकर हम सुख सागर चलेंगे, तभी हम सुखी होंगे। उसका विकल्प बताए हैं परमात्मा, बता रहे हैं किसका विकल्प बताया है, कि बेटा जाया खुशी हुई और खूब जाए थाल। जैसे पहले पुराने, अब भी ऐसा ही होता है, राजा लोगों के राजा लड़का हो जाता था, लड़की हो जो थाली ना बजाया करे, लड़का हो जो बजाते थे। क्योंकि हमारे कोई अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने ऐसा भ्रमित कर रखा है कि हम इतने सोण को सोण मानना करते बिना गणती के, कि वे जिसका पुत्र नहीं होगा उसकी गति नहीं हो सकती। रत्रा गजब हो यो, या कोई बात थी? ये तो संस्कार है, पुत्र ना भी हो किसी के भाग में को जरूरी है। तो जो परमात्मा, तो इस उस आधार से प्रत्येक व्यक्ति पुत्र प्राप्ति का ही प्रयत्न अधिक किया करता था। तो जब पुत्र हो जाता खुशी गणी मनाया करते, राजा लोग तो बैंड बाजे बजाया करते और पूरे नगर में धूमधाम से नाच गाने करवाते हैं, और गरीब आदमी पुत्र होने पर एक थाली बजाया करे, एक थाली लेकर उसने पीटेंगे, वो खुशी प्रकट करते हैं कि बेटा हो गया। अड़ोस पड़ोस में, आसपास के घरों में जब थाली की आवाज जाती है, पता लग जाता है कि भी उनकी पुत्रवधू का बालक होने वाला था और थाली बाजी, छोरा हो गया, लड़का हो गया। अब परमात्मा बता रहे हैं, बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। ओहो, कीड़ी नाल देखा आपने? कीड़ी का नाल, लाखों करोड़ लाखों कीड़ी इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है, वो कीड़ नाल क्या करें उसने? तो लाख व्यक्ति, लाख व्यक्ति तो यहां से जा रहे हैं मर के प्राणी, और 1,25,000 उसी रास्ते से आ रहे होते हैं जन्म धारण करने के लिए। तो परमात्मा कह रहे हैं, ये तो भाई आज पुत्र हुआ, खुशी मनाई और बहुत बड़ी पार्टी करी, 5-10 ग्राम गांव इकट्ठे करके उनमें लड्डू खिलाए, जलेबी तारी, डीजे बजवाया, बेगन तारा, और 1 साल के बाद वो बेटा मर गया। अब टक्कर मार रहे हैं, अब टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, किस चीज पर खुशी मनाए बैठे हो तुम? नानक साहब जी को श्रद्धालु लोग कहते थे कि प्रभु आप कभी भी प्रसन्न चित्त नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तब उन्होंने कहा था, भाई इसे गंदे लोक में अब किस चीज पर खुशी मनाऊं, किस आधार से मैं प्रसन्न हूं, यदि पुत्रों को देखकर प्रसन्न हो तो पुत्र का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए, यो काल के बिजली गेर दे, कब डाल दे। बेटी बेटियों को देखकर खुशी हो तो यही दशा उनकी हो है। और अपनी मृत्यु का पता नहीं कब संदेश आ जावे। तो यहां के किस आधार पर खुशी मनाऊं, कैसे प्रसन्न हो, मेरा तो मन मानता है को अनिविज्ञान हो गया। तो कहते हैं नानक साहब जी, ना जाने काल की कर डारे और किस विध डल जा पास आवे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। अब जिनके 24 घंटे एक सेकंड का भरोसा नहीं कित बिजली गिर जा। अब सिंपल मैन तो मरते हैं उनकी तो गिनती रही, ये वीआईपी की मृत्यु देख लो। हरियाणा के दो कैबिनेट मिनिस्टर एक ही हेलीकॉप्टर में क्रैश होने से खत्म हो गए। शपथ लिए उन्हें मेरे ख्याल में 20 दिन हुई होगी। बताओ क्या क्या उमंग थी उनकी, ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे। और एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में मर गए, 3 दिन तो उनका पता भी नहीं चला वो हेलीकॉप्टर गिरा किस, उसके सिक्योरिटी गार्ड या कोई फर्स्ट एड करनी भी नहीं पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं, इसी गंदे लोक में हम किस नशे में, हमारे ऊपर नशा है इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमय माया का, जिस कारण से हम डर नहीं रहे, हमें भय नहीं लगता। कबीर, ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। नानक साहब जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, आप ऐसे ही रहते हो। कहते हैं भाई, प्रसन्न तो होता हूं जब मुझे मेरी प्यारी आत्मा भगत जन आते हैं, मिलते हैं, और जब ये वापस आ जाते हैं, जब ये जाते हैं यहां से, तो मुझे दुख होता है। मेरे जो सत्संगी प्रेमी मेरे शिष्य हैं, जब ये सत्संग से वापस जाते हैं, उनके जाने के बाद मैं बहुत दुखी होता हूं, और जब ये वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि जाते हैं जब क्यों दुखी होता हूं, कि ये ऐसे व्यक्तियों में जा रहे हैं जो भगवान से अपरिचित हैं, और कहीं ये मेरे बच्चे उन अज्ञानियों की बातों में आकर और नाम खंडित ना कर दें, और ये दुखी हो जाएंगे। फिर मैं इस चीज से चिंतित रहता हूं, और फिर जब ये वापस सही सलामत आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंगी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, परमात्मा की भक्ति के लिए प्रयत्न जो है उसको फकीरी बोलते हैं। कि ये भक्त जब आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, शादी माने खुशी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, जब ये विछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है, और अख दे नानक सुनो जी हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। इस गंदे लोक में भक्ति भी बहुत मुश्किल होगी है, क्योंकि अज्ञान घना भर गया। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में खुद खोद कुछ गोद, बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, इताना दाना लगे हुआ जो कीड़ी का नाल। इसका विकल्प बताते हुए एक ही समाधान है, और इसको अपने हृदय में अच्छी तरह जचा लो। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान आपको दास सुना रहा है, ये किसी कोई इतिहास की कथा नहीं है, ये उस परमपिता का दिया हुआ ज्ञान है जो बिल्कुल सत्य है और आपके बहुत काम का है। तो इस अमर ज्ञान को आप अपने हृदय में लिख लो कि अलग से कोने में, और कई बार याद कराया करो दिन में। आप मानव शरीर में हैं, मानव शरीर में मनुष्य वाली सुविधा परमात्मा आपको पूर्व निर्धारित करके भेज देता है, और वही आपको मिलती है। वो देता आपको इसलिए है कि आप इन सुविधाओं को प्राप्त करके भगवान की सत भक्ति मजदूरी करके यहां से पीछा छुटवा सको। लेकिन ये काल भगवान और इसके दूत आपको भ्रमित करके इस का दुरुपयोग करवाते हैं, इस शुभ समय का जो मनुष्य शरीर का शुभ समय तुम्हें मिला है। कैसे करवाते हैं? कोई शराब का लत, किसी को शराब पीने की लत लगी, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई माया जोड़न में व्यस्त है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में मेंटल हो या पागल हो रहा है, तो कहते हैं यू करना जो काम चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तुम कर नहीं रहे, इसलिए अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। तो मनुष्य जीवन में आपको जुबान दी, हाथ बढ़िया दिए, सारी बुद्धि दे दी, भाई गर्मी सर्दी से बचने के लिए समय अनुसार जैसा भी समय है, जैसे पहले सतयुग में झोपड़ी डालकर आया करते, आज से 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष पहले हमने देखे हमारे पूर्वज झोपड़ियां डालकर अपना टाइम पास कराया करते, गुजारा किया करते थे। वह झोपड़ी जिसमें टपका ना आवे, यानी पानी ना टपके, वाटर प्रूफ बन जा, और एक 10 करोड़ का मकान एक जैसा काम करेंगे। उनका कार्य क्या है? गर्मी सर्दी से और वर्षा से ओलों से बचने के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा आड़ मिल जा। तो हमने, परमात्मा ने ये दया करी है कि तुम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र भी बढ़िया पहन सकते हो, एक झोंपड़ी भी बना सकते हो। ये इसलिए आपको बुद्धि दी थी कि इन आपदाओं में आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, आप भजन करते समय दुखी ना हो जाओ। इनमें बैठ के गर्मी सर्दी हो तो अपना राम नाम जप ले, ठीक ठाक खाना बना के खा लो, तेरे कपड़े ना भीजे खराब ना हो, यह सुविधा दाता ने दी तनो थी। और इब हम परमात्मा के मूल उद्देश्य को, उस भक्ति वाले उद्देश्य को भूल गए, या माया जोड़न पे, कोठी पे कोठी बनान पे, फैक्ट्रियां लान पे, हैं बड़ी बड़ी कार ले ले, मोटरसाइकिल, इन्हीं पर नीत बना ली और यही अपना मूल उद्देश्य मान लिया। उसके लिए परमात्मा आकर फिर याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू क्या करने लगी, याद करो उस रब को, याद करो उस मालिक को, जहां फिर तूने उसके सामने जाकर फिर आंखें मिलानी है। परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। कौन सा सौदा? राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। अब ये राम नाम का सौदा करो और व्यापार भूल जाओ, जो अन्य बिजनेस में आप दिन रात एक कर रखी है उसमें, उसके साथ साथ राम नाम का एक व्यापार बिजनेस और शुरू कर दो। और जो बिजनेस व्यापार में आप सारा दिन टेंशन में रहते हो, इस परमात्मा वाले बिजनेस से तरह वो बिजनेस भी ठीक रहेगा, आपको बढ़िया सौदा हो जाएगा, टाइम पे बिक जाएगा। परमात्मा सारे दुख वही निवारण करता है, ये सत्कर मान लेना। जब हम राजा लोग भी दुखी होते हैं तो भी परमात्मा को ढूंढते हैं कि तो सारा मिल जाए मुझे, और गरीब आदमी भी अगर भगवान की ही आर्ड करे, भगवान का ही आश्रय तक करे, तो उसको भी सारा देगा, क्योंकि वो सबका मालिक है। पुण्यात्माओं, पहली बात तो तुमको मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारे पुण्यों की कोई गणना नहीं, इतने पुण्य अच्छे संस्कार आपके। दूसरे, आपको ये मार्ग मिला जो पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में ये भक्ति मार्ग यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो आपको मिला। और तीसरा, आपको यहां आने का ये इतना सुअवसर मिल रहा है, ये कलम तोड़ कृपा है उस परम पिता कबीर भगवान की, ये बालकों का खेल नहीं है। न तो ये काल ईसा जकड़ दे आपको, आप एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, और वहीं ना जाने के बीमारी करके और मार दे ठाकन। ये तो रजा परमात्मा कबीर जी की आपके ऊपर, जिसकी जितनी आस्था श्रद्धा तरफ इस मालिक की तरफ बनती है उतनी छुट्टी दवा देता है। हम सभी काल की जेल में हैं और जेल से बाहर तभी आया जा सकता है, जेल में राहत तभी मिल सकती है कि उसकी कोई जमानत ले ले। तो कबीर परमात्मा आपकी एक या दो दिन की, जिसा भी आपने एप्लीकेशन ला रखी है, जिसे आपकी श्रद्धा है, तो एक या दो दिन चार दिन की आपकी जमानत लेता है और काल की जेल में से आपको निकलवा लेता है। यहां दो तीन दिन आपको पूरी शांति, बनी बनाया खाना, बिछे बिछाए मैट, कितनी सुविधा मिलती है। यहां से जाते ही उस काल की जेल में, आप तो घर कहते हो उसको, परमात्मा ने इसे जेल बताया है, उसमें जाते फिर जुड़ जाओगे, एक सिर उठान की भी फुर्सत नहीं मिलती। और कल को मृत्यु हो जाए आपकी, वो तो होएगी, आज ना तो 10 साल बाद छह होएगी, और कभी भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखो। हम भूल नो पड़ जाए, हम इसलिए भूल जाते हैं कि हम नो सोचा भी नहीं मरेंगे, और जो मर्या काल वो भी तो ये सोच रहा था मैं आज नहीं मरूंगा, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो भी ये सोचे हुए था कि मैं भी नहीं मरूंगा। तो या तो एक अटकल लाए बैठे हम, मृत्यु का ना भरोसा कब आ जाए। कभी परमात्मा कहते हैं नहीं भरोसा देह का, ये विनिश जाव छन माही, और कहते हैं श्वास उस श्वास में इस सतनाम का जाप कर और ये तन कछ नाही। कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, कै सेवा कर एक सेवा कर साधु की और गोविंद के गुण का, सतगुरु की सेवा कर और परमेश्वर के वो भक्ति कर। जैसे पहले पुराने समय में मकान बनाया करते थे तो लकड़ियां कड़ी होती थी और कड़ियों के बीच में एक उडन बीम होता था, सतीर, उसके ऊपर कड़ियां रखी जाती थी। कई बार वो सतीर जो है या उनमें से कोई कड़ी जो बैटन होती थी डंडे से लकड़ के, वो कोई क्रैक हो जाते थे और गिरने को हो जाते, बैंड हो जाते उनमें, तो उसके नीचे एक और सपोर्ट दे दिया करते किसी लकड़ की, एक कड़ी की या कोई मोटे लकड़ की नीचे सपोर्ट दे देते थे, उसको ठाहर बोलते हैं। तो पुण्यात्मा आपका जो जीवन है इसकी छात टूटने हो रही हो तो इसका क्या तरीका है कि इसका ठाहर ला दे। ठाहर मतलब आपके जैसे श्वास पूरे हो गए, प्रारब्ध खत्म हो गया आपका और मृत्यु के दिन आ गए। और यदि आपने परमात्मा सत्य पुरुष की सत्य साधना, सत्य यानी तत्वदर्शी संत उसके नुमाइंदे संत से प्राप्त कर रखी है तो आपने वह ठाहर ला ली। वह ठाहर कैसे लगेगी, एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुणगा, सतगुरु की सेवा कर, सतगुरु की सेवा है। आप यहां आते हो भगवान के जो है दरबार में, परमा अपने गुरुदेव में सच्ची श्रद्धा रख है, और जैसा भी यहां व्यवस्था हो जो भी जिस योग्य है तो सेवा करने की चेष्टा करे। तो इस तरह कहते हैं एक सेवा कर साधु की और फिर गोविंद के गुणगा, सेवा करने योग्य नहीं है तो भक्ति कर मालिक की सतनाम की। तो इससे आपकी वह ठाहर बनगी। कबीरा ये तन जावेगा, ये तो जाएगा जितना समय तेरा लिखा है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी कर सकता है कबीर भगवान, उसके पास एक सुप्रीम पावर है, विटो पावर है। वो कैसे कैसे बढ़ाएगा आपके एक्सटेंशन, कैसे करेगा आपके जीवन को, ये नाम का और ये भक्ति सेवा साधना दान धर्म यज्ञ जो तुम करते करवाते हो, ये आपके उस टूटते हुए उडन बेट बीम का, उस सतीर को टूटते हुए को बचाने के लिए एक सपोर्ट है। या लाजे राम नाम ले पूरे संत और फिर भक्ति कर डर कर, तो ये एक सपोर्ट लग गया। और हमने देखा वो सपोर्ट जब लग जाता है उस लकड़ का या बीम का या कड़ी का, वो मनवाना 20 साल काट दे और 30 वर्ष निकाल दे, वो मकान न्यो का न्यो डटा रहे, सारी छत रुक गई। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, व ठार क्या बताई है, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, और लोहे के साताव जात है काया देश राही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये यो सौदा फिरना ही, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिल रहा है, और मनुष्य जीवन मिल गया तो वही ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, ये और ये समय नहीं मिला है, क्योंकि ये बिजली पीढ़ी का समय है, इसमें परमात्मा ने बैंड उठा रखा है। अब सबको पार करना है, सबको ये तत्व ज्ञान बताना है और सभी को सार नाम देना है जो इसके अधिकारी होते चले जाएंगे, और फिर सब हम सतलोक चले जाएंगे। हमारा वो मूल स्थान वहां है। अब कई लोग कहे भाई सारे भक्ति करके सतलोक चले गए, पृथ्वी पर कौन रहेगा बताई से बुंडे, गंदे स्थान पर हमने ठेका ले रखा है। यू चांद खाली पड़ाई अभी धक्के खाए जाएगी, पड़ी रहेगी खाली, तो यहां यो भी पड़ी रहेगी। मारा तो मूल स्थान तो सतलोक है, हमारे तो वहां है वो वास्तविक ठिकाने, अपने मकानों के न्यू पड़े वहां पर खाली छोड़ कर रहे हम। तो ये बातें हैं अनजान लोगों की, उनकी बातों से हमने हटके अपने तत्व ज्ञान के सहारे इस मालिक के मार्ग को नहीं त्यागना है। तो क्या बताते हैं, यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। पुण्यात्माओं आपके कितने पुण्य हैं वर्णन नहीं किए जा सकते, जीव गणना नहीं कर सकता, परमात्मा ही कोई पता है। इतना ये सत्यनारायण की कथा आपको सुनने को मिल रही, सत्यनारायण। पहले सत्यनारायण की कथा क्या करते, विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते। सत्यनारायण माने अविनाशी, अविनाशी नारायण माने परमात्मा। तो हम उस पहले श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे, सत्यनारायण तो कबीर परमात्मा है, कबीर जी हैं। तो यह सत्यनारायण की कथा आपको सुनाई जा रही है और आपको सुनने का सुअवसर मिला है, ये भी मालिक की दया ही है, कबीर भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। ये आपका मूल धन, ये वास्तविक धन ये है। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीरा दर्शन संत के, परमेश्वर आवे याद, लेखे में वो है घड़ी बाकी का समय बाद। ओह, यही समय जो आपको मिला है संत के दर्शन में भगवान याद आया, क्यों आए, किस लिए थे यहां, परमात्मा की तरफ में उस मालिक के पास जाने के लिए। हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि हम स्वस्थ हो जाए आत्मा हमारी, ताकि हम अपने घर लौट जाएं, इस हॉस्पिटल से छुट्टी मिले। तो ये याद रखना है। तो यहां परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब हम सतगुरु के दरबार में आवे हाँ तो भगवान याद आवे है। यही समय हमारा गुड अकाउंट में है, बाकी बाद व्यर्थ है, यूजलेस। तो यहां परमात्मा ने आपके ऊपर कितनी मेहर कर रखी है और ये बात सुनने को मिलती है। यो मन तो ढीठ हो रहा है, अब इसकी ढीठता भी इन इस ज्ञान ते और समाधान भक्ति ते या ठीक हो जाएगी, इसका भी फिर लगन लग जाएगी चल, क्योंकि आत्मा इसका सहयोग नहीं देती फिर। और जब तक आत्मा इसका सहयोग देती है तो ये कितना रागनी गाड़ियां दौरा बैठेगा, कितना ताश खेलनियां दौरा, कितना एक लाश सैर सपटे करता हंडे जा रागनी गाता है, तो या फिर अपने धंधे में जुड़ा रहेगा उस काल वाले कोल्लू में, वहां राज्य रख है। और जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है फिर इसका सहयोग नहीं देती यार, यू तक करे ना कर मोरे रख है, फिर देखा तो रहने दे, या नु करना फिर नहीं, एक चाल आएंगे तो, या फिर इसने ठठा ले है, इस तो तगड़ी होगी भैया इसकी। पहले हमने क्या कर रखा था, मन की खुराक गणी डाल रखी थी और आत्मा की खुराक थी ही नहीं। अब हमने आत्मा की खुराक इतनी कर दी कि मन की खुराक रही है कोनी, बहुत कम होगी तो यू आप मुरझान लग जाए थोड़े दिन में, और इसके पीछे पीछे आ जाएगा ओलेगा। अब आत्मा इसके पीछे पीछे थी, यू ड्राए जा था, तेरा नो नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा है कि फिर चलेंगे सत्संग में, के दरिया सत्संग में बूढ़े होकर नाम लिया करें। यानी इस तरह की दंत कथा इस काल ने जो फैला रखी है, किंवदंतियां फैला रखी हैं, उनसे ये आत्मा को डराए रखे था। अब इस परमात्मा के अमर ज्ञान से आत्मा उभर गई, इसको बेरा पट गया कि तो बकावे हैं, तो फिर ये इसका सहयोग नहीं देती, सौ काम छोड़ गए और मालिक के चरणों में आ जाती है। तो फिर यहां आकर के आपको वो आहार पुनः खिलाया जाता है। अब जैसे आप बिल्कुल बालक हो आप, आपको पता नहीं, लेकिन हो बहुत अच्छी आत्मा, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। अब जैसे आपको यहां बुलाया जाता है, आपको फीड किया जाता है आपके अंदर ये जो कानों के माध्यम से है, ये परमात्मा की आत्मा की आहार या खुराक आपको पिलाई जाती है। जैसे बालक तो निप्पल के लिए दूध पिया करे, या माता अपने सतन से दूध पिलाती है। अब बच्चे ने मां लिया होगी ठाक है, खेल रहा होगा बैठा बैठा कि तब बेटा या बेटी को, उसने बेरा है कि मैं काम लागूंगी, यू भूखा होगा फिर रोन लग जाएगा, इसने पहले छका दू, तो वह लाती है पकड़ कर बच्चे ने बुला के, आ जा बेटा बेटी, उन्हें खराब हो रहा होगा तो नवाओ दुआओगी फिर दूध पियाओगी। अब वो दूध पीता पीता भी उसकी नीत नूर है, भाज ले खेलूंगा बड़े बड़का में, बच्चा में खेलूंगा, वो दूध भी पी रहा है माँ का और बीच बीच में भागने की चेष्टा भी करता हुआ फिर रोक कर निकल और पी ले थोड़ा और फिर उसको छोड़ देती है, अगर जाहिर खेल लेते तो वो अपने फिर खेल में लग जाता है और फिर भूखा होता है, फिर आ जाता है या माँ उठा लेती है, आ जाले दूध पी ले। तो पुण्यात्मा आपको यहां बुला करके उस माता की तरह आपको दूध पिलाया जा रहा है, और फिर अब आपकी नीत यहां बैठे बैठे भी नहीं हो रही है, सत्संग खत्म होते ही चलेंगे, वो काम रह गया, वो ऐसे करूंगा, वो ऐसे करेंगे, वहां पता नहीं रिश्तेदार आए पाओगे, कोई बात नहीं। तो आपको 2 घंटे यू पिला कर दूध छोड़ देंगे, जाओ खेलाओ और फिर आ जाओगे, भूख लगेगी जब तो फिर पिला दी। इस तरह वो बच्चा जैसे माता उसको दूध पिला रही है फिर खेलने छोड़ देती है, वो धीरे धीरे वो स्वस्थ बड़ा बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, फिर वो अपना आहार आप प्राप्त करके स्वयं ही व्यस्त रहता है। ऐसे ही आपको यहां इस आत्मा का आहार पिलाया जाता है और आपको छोड़ दे दिया जाता है, खेलाओ उन खिलौनों में, फिर आ जियो, फिर कुछ दिनों में ऐसे आप अभ्यस्त हो जाओगे और फिर स्वेच्छा से यहां सत्संग में आना प्रारंभ कर दोगे। आप अब माता पिता को पता है कि इस बच्चे को आहार ये स्वस्थ है, ठीक खाना खा रहा थी, तो इब गबरू हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ऐसे ही दास को पता है कि आप आ रहे हो, ये ज्ञान सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आप उडारू हो जाओगे, कुछ दिन में सतलोक चालन दोगे, आप में भक्ति बन जाएगी। अब क्या कहते हैं, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। अब क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू भूल गवाही। अब जैसे लोहार कारीगर क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, जैसे ही हमने देखी आया करते गाड़े लोहार आया करते थे गाड़िया में, और वो साथ रखे अपने सारी वह दौकनी दाकनी भी अरण परण सा, और उसमें चमटे पलटे ये इस तरह के औजार बनाया करते थे, तो वो उसने लोहे को उसमें दे देते एरन में, और एक हाथ से चलाते फूक सी मार के वो आग तेज जल जाती, लोहा कति गर्म हो जाता, लाल हो जाता लोहा, तो उसको रख के गण एरन पे और गणगेला अथोड़ा गेला उसको कति चोट मारते जबरदस्त, और फिर उससे वो चमटा पलटा जो भी छालनी छाज बना देते थे, और जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है तो कुछ नहीं होता, चाहे उस पर कितना ही हथौड़े मार ले, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वह चीज नहीं बने जिसके लिए वो गर्म किया गया था। तो पुण्यात्माओं, जब तक आप मानव शरीर है, आपका लोहा गर्म है, ये लोहे जैसा ताव है आपके ऊपर, और जब मृत्यु हो जाएगी तो ये ताव समाप्त हो जाएगा, और ताव समाप्त होने पाछे फिर के बनेगा, कुछ नहीं बनना, फिर तो गधे कुत्ते बांगा टेढ़ा मुंह लगेगा आपके। अब ये मनुष्य जीवन रहते रहते इस पर राम नाम की चोट मार ली, तो आप वो वस्तु बना लोगे जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। आगे परमात्मा कहते हैं, दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाई। अब जैसे कोई 1-2 लाख रुपया लेकर किसी दूर देश शहर में चला गया और वो गया था वहां कुछ सौदा खरीद के उसको दुगना तिगना करूं, बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, तो उनमें से जो उस सौदे का सदुपयोग करा, उस पैसे का मूलधन का जो 2 लाख रुपये लेके गया था, सौदा खरीदा, कुछ कड़क खरीदी या कुछ और वस्तु पदार्थ खरीदा, फिर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया, या यहां ले आया, यहां से बेच कर फिर चला गया, तो उसने तो अपने मूल पैसे के दुगने तिगने कर लिए। और जिसने उस मूल पैसे में थे, उस मूल धन से गुटी लाई, कमरा ले लिया किराए पर, सिनेमा में देखे, ठाट करे, ताश खेले, बकवाद गड़ी, और उस मूल धन को ही खर्च कर मुंह लटका के वापस आ गया। अब वो 2 कर्जा हो गया उसके ऊपर, वो मजदूर बनेगा किसका, जिससे वो पैसे लेकर गया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जो पुण्यात्मा है, भक्ति करते हैं परम संत की, देखो प्रत्येक ग्रंथ ने एक का संकेत किया है, कभी भक्ति करो, परमात्मा की साधना करो, मनुष्य जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलता। दूसरा संकेत ये कर तत्वदर्शी संत की खोज करो। यहां के भगवानों ने भी, गीता ज्ञान दाता ने भी, जो ब्रह्म है इसने भी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में 2 बार कहा है कि उस परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान। तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। अपना जो अपने सत्र का ज्ञान देना था वो दे दिया, ये ऐसे भक्ति करो, ओम नाम का जाप करो, ऐसे करो। फिर कहता है यदि उस परमात्मा की शरण में जाना है, पूर्ण ब्रह्म की में, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, तो उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। तो पुण्यात्मा अपने परमेश्वर की वाणी, सचिदानंद गण की वाणी भी यही कहती है, कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है, तत्वदर्शी संत का संग करो, उनके उनके पास जाओ, उनके पास जाने के बाद फिर आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, सब मार्ग मिल जाएगा। तो पहले उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर के यथार्थ भक्ति लेकर के, और फिर राम नाम का रट्टा ला दे या मजदूरी कर। तो उसके लिए बताते हैं कि दुगने तिगने लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाही। ये लोहे जैसा ताव जाता है आपका मनुष्य समाप्त होते ही, ये लोहे वाला ताव ठंडा हो गया, फिर कुछ नहीं बनेगा, इसके रहते रहते आपने करना है। और फिर दुगने तिगने करे चौगने किन हो मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को ये भक्ति मार्ग मिल गया, फिर डट के धर्म दान भक्ति सेवा सिमरण कर रहे हैं, उन्होंने तो कर लिए दुगने तिगने और चौगने। और जो गणे बकवाद गुटी लावे, चाहे उनके पास कितना धन है, चाहे वो कितनी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो अपना मूल धन खर्च रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, उसे सौदा नहीं कर रहे मालिक का जो करना चाहिए था, तो वो तो अपना मूल धन नष्ट कर रहे हैं, और आप दुगने तिगने चौगुना धन का इकट्ठा कर रहे हो राम नाम का। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, और लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, और दुगने तिगने करे चौगने किन्हों। कहते हैं तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही और दुगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गुआई। जैसे कोई देवता बना है तो वो भी अपने उसने भी सौदा किया है, तीनों लोकों में जो भी जैसा जहां जिसको व्यवस्था मिली है वो सब अपने अपने सौदा ही कर रहे हैं, और जिनको सत्मार्ग नहीं मिला वो अपना मूल नष्ट कर रहे हैं, मूल मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगा माही, और उस दरगा में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। ये पिंड फूटेगा शरीर नष्ट हो जाएगा, ये दम टूटे ये सांस खत्म होंगे इस शरीर को फूक डालेंगे, और फिर हो लेखा दरगा माही, फिर उस दरगा में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। वह दिन की मोए लज्जा डरनी लग गए लज्जा रैक नाही। अब परमात्मा कह रहे हैं कि इतना डरना चाहिए भाई, उस दिन क्या होगा, ये भगवान यहां से जावांगे संसार छोड़ के, वहां ना भाई साथ होगा ना मां साथ होगी, ना बेटा ना बेटी, ना कार ना कोठी, ना कोई मंत्री आपका दोस्त है वो भी साथ नहीं होगा, वहां तो एकले निसाब देना पड़ेगा कति आमने सामने भगवान के खड़ा होके, न्यायाधीश के सामने आमने सामने खड़ा होकर सरकार के सामने, उस सच्ची सरकार के सामने। तो वहां बताते हैं कि वह दिन की मोर डरनी लग गए लज्जा रह के नाई, भक्ति करते रहो कोई बाधा ना पड़े। कहते हैं इतना डर के भक्ति करो भगवान, उस दिन कहीं कोई उख चुक रह जा वहां पिटाई हुआ है। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पातू फेर चुरासी जाही। नर नारायण यानी मनुष्य रूप, मनुष्य जीवन परमात्मा तुल्य तुझे दिया है, परमात्मा ने अपना ही स्वरूप तुझे दिया हुआ है। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि छठे दिन भगवान ने आदमियों मनुष्यों की उत्पत्ति की, भगवान ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न करेंगे, तो मनुष्य भी अपने जैसा है। और अपने सदग्रंथ में लिखा है कबीर परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि जो परमात्मा को देखा उन्होंने कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारा भगवान मारे मारे जैसी शकल का है, हमारी उनिहार है, हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारा भगवान मनुष्य जैसा ही है। तो यहां बताते हैं नर नारायण देह पाके तू फिर चुरासी जाई, इतना सुंदर शरीर दिया भगवान ने और तू फिर नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, सारी कोविद करे सत भक्ति नहीं कर रहा, तो तेरे भाग फूट गए भाई, कितनी याद दुआओं है परमात्मा। नर नारायण देही पाके तू फिर चुरासी जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जा मन मरण मिटाई। अब देखो बात वहीं आ जाती घुमा फिरा के, कि भी उस सतगुरु की मैं बलिहारी, उस संत की जो जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलवा दे, उस पे कुर्बान जाऊं। बाकी तो संत हैं गुरु हैं बतेरे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक का मार्गदर्शन कर रहा है, कोई ब्रह्म तक की जानता है, इनसे जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं हो सकती, और जन्म मृत्यु नष्ट नहीं होगी तो हमारा पूर्ण मोक्ष परम शांति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई, जो जन्म मृत्यु के इस रोग को समाप्त कर दे, उस सतगुरु पर मैं कुर्बान जाऊं, यानी उसके ऊपर आसक्त हो जाओ, उसकी प्रत्येक मर्यादा में रहते हुए उसके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को सफल करो। जब तेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद क्या होगा जो भक्ति नहीं करते। वैसे तो मृत्यु तो जो भक्ति करते उनकी भी होगी और ना करते उनकी भी होगी, तो समय निर्धारित है सभी ने जाना, यानी कोई कोहर रहा ना रहे। तो इस बात को मद्देनजर रखकर हमने और गणी भक्ति करनी चाहिए कि शरीर तो जागा 100% जाओगा, और जाओगा तो ये जो हम जिसके ऊपर हम आसक्त हुए बैठे हैं बेटा बेटी कार कोठी ये भी ना रहे अपनी, ये तो यही रह जाऊंगी, आपने खूब बेरा है। परमात्मा कहते हैं इस बात ने सब जाना है कौन सी डूबण की है कौन सी तरण की, पर ख्यास नहीं करते। तो सत्संग में आकर या ख्यास कराई जाती है, आपके हृदय को इस तरह से साफ वास किया जाता है कि आप में या जगह बनी रहे ख्यास करण की। ये सारा कुछ इतना कुताम जाम जोड़ के आपको ख्यास कराने के लिए, इसमें लगन लगाने के लिए, इसके ऊपर गौर कराने के लिए ये सारा कुछ आपको उदाहरण ज्ञान कथा सब सुनाए जा रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि एक दिन तो यहां से हमने जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो क्यों ना हम उस स्थान पर चलें जहां से जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ेगा। क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़ी रहते भी सब जाई, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। जो पहले थे वो जा चुके, वो चले गए, वो तो वापस आपके पास नहीं आए जो संदेशा दे सके। अगुड़ा के बनी मरी गए लिया, और रहते भी सब जा, और बिन सतगुरु बिन परमेश्वर की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। जैसे आज हम यहां अपना ठोड़ मान रहे हैं, कोई कोठी होगी अपने नाम करा रखी है, 10-20 एकड़ जमीन होगी या कोई फैक्ट्री बन गई, तो हमने वो ठोड़ मान लिया अपने की हमारा ठिकाना नहीं। कल मृत्यु हो जाओ फिर कहां जाओगे? मान ले पुण्य है तो स्वर्ग में, और स्वर्ग के पुण्य समाप्त होते ही स्वर्ग से फिर नरक में, नरक के पाप कुछ अक्षीण हुए तो फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि, गधे की योनि मर गया फिर कुत्ते की योनि, यानी ठिकाना नहीं। ये तो मोमेंट बना रहेगा, चला चली रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाने के बाद ये तुम्हारा ये चला चली समाप्त हो जाएगी। तो बिन साहेब की बंदगी, बिन परमेश्वर की भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। अब कौन से भक्ति, कौन से भगवान की, वो भी डिफाइन आपको रह रहकर हम करते रहते हैं। तो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जा मण मण मिटाही। अब तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये भी नाशवान है। इनके विषय में आपने देवी भागवत 3रा स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पे ये दिखाते हैं, जिसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। इससे सिद्ध है कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। फिर इनकी भक्ति करने वाले का भी कितना ठोर ठिकाना नहीं बना। परमात्मा कहते थिर पकड़ थिर रहिए, थिर अचल, जो कभी ना हल्ला डग गए उसको पकड़ के तू थिर रह सकता है। अब जैसे कोई बोधे से टहनी को पकड़ के लटक गया तो अगेला टहनी टूटे, नीचे आके पड़े सिर फूटे, राचे मोटे डार न पकड़ के बैठे तो गिरे नहीं उससे। तो ऐसे कहते हैं थिर पकड़ थिर रहिए। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म, ये थिर नहीं है, ये स्थाई नहीं है, ये अस्थाई है, अब ये नाशवान है।